मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजू जहां में मैं तुम सा कहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।
ओम शांति। एक शिष्य अपने गुरु के यहाँ आश्रम में कई वर्ष रुकता है और एक दिन अचानक देखता है कि जो गुरु है वो नदी के ऊपर चल कर आ रहे। वो गुरु से मिलता है और कहता है, मैं इतने वर्ष आपके पास रुका पर आपने मुझे ये विद्या कभी नहीं सिखाई, पानी पर चलने की। बाकी आपने सब कुछ सिखा दिया, ये क्यों नहीं सिखाया? गुरु ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे यही चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ज्ञान वो सब सिखाया पर ये चलना सिखाओ। गुरु ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, नहीं मुझे बताओ कैसे किया। गुरु ने कहा, सिंपल है, बस राम नाम का मंत्र है, बस राम नाम है, उसके आधार पर मैं चल पड़ा। शिष्य दूसरे दिन उसी नदी पर चलने की कोशिश करता है और जैसे ही चलता है डूबने लगता है और डूबता है, पूरा भीग जाता है और गुस्से में उसी हालत में गुरु के पास पहुंचता है और पूछता है, ये क्या हुआ? आपने राम नाम के लिए कहा था, मैंने राम नाम तो लिया पर मैं डूब गया। गुरु पूछता है, तुमने कैसे किया सब, कितनी बार राम नाम लिया? वो कहता है, कितनी बार? कई बार। पहले तो चलने से पहले नदी के तट पर बैठकर प्रैक्टिस की राम नाम की, और फिर जब पैर रखा और चलने गया तो भी कंटिन्यूस दोहरा रहा था, और जब डूबने लगा तब भी दोहरा रहा था। गुरु कहते हैं, तुमको इतनी बार कहने के लिए किसको किसने कहा था? एक बार ही काफी है। इसका मतलब श्रद्धा की कमी है, इसका मतलब निश्चय की कमी है। वन टाइम इज इनफ। पर वो जो वन टाइम है वो कैसा होना चाहिए? संपूर्ण निश्चय से, संपूर्ण श्रद्धा से, अहोभाव से, प्रेम से, आर्त पुकार, दिल की पुकार, हृदय की अतल गहराइयों से निकली हुई पुकार, तो ही वो उस तक पहुंचती है। उसके लिए क्या चाहिए? उतना ही गहरा प्यार, उतना ही गहरा प्रेम, और प्रेम जो उस दिन भी कहा था, एक ऊर्जा है। प्रेम वाइब्रेशन है, एनर्जी है। जब वो ऊर्जा हृदय में प्रकट हो जाती है तब सब कुछ एक नजर आता है। सारी सृष्टि, सारी कायनात, सब कुछ, फिर वो भेद नहीं रहता, ये अलग, समता, समभाव हृदय में प्रकट होता है। और जो हृदय प्रेम की इस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, फिर ऐसे हृदय में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं अपने आप साकार होते हैं। जो प्रकृति से जुड़ जाता है, संपूर्ण सृष्टि प्रेम से भरी है, हृदय में नफरत और घृणा है। जब ये प्रेम उस विराट प्रेम से एक हो जाता है तब जो जो संकल्प उत्पन्न होंगे वो साकार होंगे। प्रकृति हमारी हर बात मानेगी और हमारे मन में ऐसे संकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे जो प्रकृति के विरुद्ध है। संपूर्ण कायनात, संपूर्ण सृष्टि जुट जाएगी उस संकल्प को पूरा करने के लिए, और वो प्रेम यदि प्रभु प्रेम है तो उसकी तरंगे फैलेगी चारों तरफ। तो आज ये दो मुरलियां है, 26 मुरलियां बाकी है, हर दिन दो दो मुरलियां लेंगे, 13 दिन, भट्टी के अंतिम 13 दिन। इस मुरली में बाबा ने हमें अपने तीन रूप याद दिलाए। इस मुरली में बहुत नवीनता है कि क्योंकि ऐसे कंबाइंड रूप वो भी तीन बार बार एक साथ नहीं कहे गए हैं। पहला कंबाइंड रूप आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष। भक्ति में या फिर षडशास्त्रों में इंडिया में 6 फिलोसॉफीज है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत वगैरह वगैरह। उसमें एक है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, संपूर्ण सृष्टि पुरुष और प्रकृति के मिलन से बनी हुई है, ये प्रकृति और ये पुरुष, ये पुरुष और प्रकृति का खेल है, सांख्य शास्त्र इसे कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे पहला कंबाइंड रूप कौन सा है? आत्मा और शरीर, देह और देही, मकान और मकान का मालिक। तो शरीर और आत्मा बस यही खेल है। सारा गड़बड़ जो हुई है वो इसी की वजह से हुई है, दोनों एक कर दिए हमने। इनको अलग अनुभव करना, आत्मा अलग शरीर अलग, मैं अलग हूं ये अलग है, शरीर से डिटैचमेंट, जो भक्ति मार्ग में उदाहरण दिया जाता है सूखा नारियल और गीला नारियल। गीला नारियल चिपका हुआ है, वो आबद्ध अवस्था है, कर्मबद्ध अवस्था है जीव आत्मा की, और सूखा नारियल वो अवस्था है जिसमें वो जो खोल और गिरी अलग अलग है, चलते फिरते उठते बैठते ये अनुभव की मैं अलग शरीर अलग, डिटैच्ड शरीर से। सारे दुखों का कारण आत्मा का ये चिपकाव है इस देह से, चिपक गई है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूली है, उसे लगता है वो ये नहीं वो ये है, सारा कुछ इसी के लिए है और यही दुखों का कारण है। किसी गुरु ने कहा जाओ जाकर सबसे निम्नतम वस्तु इस संसार की जो है वो लेके आओ, सबसे शूद्र जो है, उससे शूद्र कुछ नहीं हो सकता, ऐसी वस्तु। वो शिष्य ढूंढता है, घूमता है, सब जगह जाता है, सोचता है क्या है जो सबसे शूद्रतम है, उससे शूद्र कुछ है ही नहीं। वो जाता है और उसे एक जगह पर स्टूल सैंपल विष्टा, वो कहता है हाँ ये है सबसे निकृष्ट, इससे निकृष्ट और क्या हो सकता है, और वो कहता है इसको ही लेके जाता हूं। जैसे ही हाथ लगाने जाते हैं वो विष्टा बोल उठती है, विष्टा कहती है रुको किधर हाथ लगा रहे हो, वो विष्टा कहती है तुमने एक बार मुझे अपने अंदर डाला तो मेरा ये हाल हो गया, मैं बहुत स्वादिष्ट मिठाई थी, तुमने मुझे अपने भीतर डाला तो मेरा ये हाल हो गया कि लोग गुजरते भी है तो रुमाल रखते हैं, अब तुम दोबारा हाथ लगाओगे तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। मेरी ये हालत हुई है तुम्हारी वजह से, जो मैं इतनी शूद्र बन गई। वो शिष्य को आत्मग्लानी होती है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं ही सबसे शूद्र तो मैं ही हूं, और वो विनम्रता का भाव जागता है और इस देह के प्रति वैराग भी। द्वापर से ही ये तदात्म्य चालू हो गया, शरीर के प्रति चिपकाव, जुड़ाव, सारा कुछ इस शरीर के लिए। फिर उसके लिए किसी को मारना भी पड़े, किसी पर अत्याचार भी करना पड़े, तो भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। किसी की देह प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना पड़े, दिखावा करना पड़े, प्रेम का स्तुति करनी पड़े झूठी, वो सब करता है। तो सबसे पहला तो यही प्रैक्टिस है, आत्मा सारी मुरलियों का सार भी तो यही है। आत्मा शरीर, आत्मा शरीर, अलग 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 अलग, ये पहला कंबाइंड रूप। दूसरा भविष्य का कौन सा है? विष्णु। चतुर्भुज, वो मेरा स्वरूप है, न स्त्री न पुरुष। विष्णु अर्थात न स्त्री न पुरुष, दोनों का ही कंबाइंड रूप। और तीसरा जिस पर ये सारी मुरली है वो है शिव और शक्ति एक। बाबा ने कहा ये तुम्हारे तीन कंबाइंड रूप है, पुरुष प्रकृति, भविष्य का विष्णु और वर्तमान का शिव शक्ति, अर्थात तुम कंबाइंड हो, तुम संयुक्त हो। इसको ना भूलो, दिन रात उठते सोते जागते ये जागृति रहे, ये भूलो मत कभी भी कि मैं कंबाइंड हूं, मैं कंबाइंड हूं, मैं अकेला हूं ही नहीं। आई फील लोनली व्हेन आई फॉरगेट गॉड। अकेलापन कब आता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो दो शब्द है हिंदी में, एक अकेला और एक एकांत। अकेलापन पन और एकांत, अकेलापन अर्थात लोनलीनेस, ये दुख की अवस्था है, और एकांत आनंद की अवस्था है। दोनों में व्यक्ति और किसी के साथ नहीं है, अकेला ही बैठा है, पर एक एकांत में है, एक अकेलेपन में है। एक में उदासी है, बहुत उदासी है, डिप्रेस्ड है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, सबने छोड़ दिया, सबने दूर कर दिया। एक भाई को जो हम जानते थे, जिसको एक बीमारी थी सोरियासिस की, सोरियासिस बीमारी स्किन की, पूरे स्किन में वो स्केल्स निकलते, सिल्वरी स्केल्स, बहुत सारे पेशेंट्स होते, किसको यहाँ होता है पैर में, हाथ में, मुंह में, किसको पूरे शरीर में होता है। वो जो भाई था उसको पूरे शरीर में था, फिर उसने कई सारी ट्रीटमेंट ली पर ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसने चालू की और वो अचानक सब ठीक हो गया, और फिर उसकी शादी हो गई उसी समय, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शादी के बाद वो बीमारी वापस आ गई। फिर उसकी पत्नी और वो जो ससुर थे उन्होंने केस कर दी, पत्नी छोड़ के चली गई और वो डिप्रेशन में चला गया, और इतना ज्यादा डिप्रेशन कि उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। फिर उदास, निराश, तो ऐसे बहुत से केसेस संसार में है जहां क्या आ जाती है, उदासी, एक लोनलीनेस। तो इस मुरली में ऐसी 10 बातें बताई है बाबा ने, कि जब तुम बाप से दूर चले जाते हो, जब तुम भगवान से दूर चले जाते हो, तो अकेले हो जाते हो, और उस अकेलेपन में क्या क्या होता है, उस अकेलेपन की अवस्था में तुमको क्या क्या अनुभव होता है। सबसे पहला कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण। बाबा ने कहा जैसे ही अर्जुन भूल जाता है कि उसके साथ कौन है, तो वो क्या बन जाता है, निर्बल और कायर। तो जैसे ही अकेले हो जाते हो क्या अनुभव होता है, निर्बल बन जाते, कायर हो जाते, भयभीत होने लगते छोटी छोटी बातों से। तो अकेलापन जब आएगा, अकेलेपन की परिभाषा कंबाइंड नहीं, अकेलेपन की परिभाषा शिव शक्ति से अलग हो गई है। इसी मुरली में कहा है कि शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता, और शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं। कल टेस्ट में भी था ना, चाल चल नहीं सकती, नहीं था, होगा फिर आगे। तो सबसे पहला जैसे यू बिकम लोनली क्या अनुभव होता है, पावरलेस, निर्बल। अभी तक जो सामर्थ्य अनुभव होता था, मैं कर सकता हूं कोई भी चीज, नथिंग, और जो निर्बल व्यक्ति होता है कायर बन जाता है, घबराता है, भागता है, छोटी छोटी चीजें उसे डराती है। ये पहला। दूसरा, कमजोरी के संकल्प आने लगते। एक होता है शक्तिशाली संकल्प, मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, ये भी करूं, पर जब अकेले हो जाते हैं तो क्या आने लगते हैं, स्वतः ही वो सारे संकल्प प्रकट होने लगते हैं, कमजोरी वाले, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वीक थॉट्स, छत ही ना गिर जाए रात में, कहीं भूकंप ना आ जाए, बच्चा जा रहा है एक्सीडेंट ही ना हो जाए, इतने कमजोर विचार रहते हर चीज में, मेरा क्या होगा, बेचैनी, घबराहट, अनइजीनेस, हमेशा डर रहता है, भय, भय लगता है, हर चीज का भय लगता है, इतनी छोटी छोटी चीज का भय। पेशेंट्स ये सारी बातें बताते रहते हैं, इतना भय कि ओपीडी के बाहर बैठे रहते हैं, अंदर आके कहते भय भयभीत ये है कि कहीं मेरा नंबर ही नहीं आया तो, अगर मुझे देखा ही नहीं तो, वहां से भय चालू होते, हर चीज में भय, हर छोटी छोटी बात में भय, इतना भय, आके कहते क्या तकलीफ है तो बोलते भय, हर चीज भय की ही बीमारी है, डर लगा रहता है। पूछो कौन सा डर है, वो परिभाषित नहीं कर सकते, अभाष्य है। क्या भय है वो भी नहीं पता। मनुष्य को सबसे ज्यादा भय, दो भय सबसे ज्यादा सताते हैं, एक तो मृत्यु का भय, ये सबसे बड़ा भय, और इससे भी बड़ा और एक भय है, वो कौन सा, अज्ञात, फियर ऑफ द अननोन, अननोन क्या होगा, कौन सा भय है वही नहीं पता, अननोन है कुछ तो, अपरिचित है जो भयभीत करता है, अदृश्य है जो भय घूमते रहता है साए की तरह। तो जब भी अकेले हो जाओगे तो सबसे पहले क्या बन जाओगे, निर्बल, कायर, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे, बड़ी परिस्थिति आ गई, छोटी परिस्थिति आ गई, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, अब मेरे से क्या होगा। एडिसन था, उसकी इतनी बड़ी लैंड थी आइलैंड पार्क में, इतना बड़ा लेबोरेटरी, उसमें आग लग गई, उसमें इतना सारा रिसर्च सब कुछ, वो पूरा जल रहा है इतना बड़ा कि बड़ा, हजारों लाखों डॉलर्स का, और जब जल ही रहा है तो एडिसन ऐसा दिख रहा है। उसका बेटा भाग के आता है, डैडी ये क्या है? वो कहता है कुछ नहीं, अपनी मम्मी को बुला के लाओ, उसने इतना अच्छा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, इतनी बड़ी लैब जल रही है। बिल्कुल अप्रभावित, परंतु 10 साल के अंदर वो फिर से सब कुछ खड़ा कर देता है। उसका जो बेटा है उसने रीडर्स डाइजेस्ट के 1953 के एडिशन में ये कहानी वर्णन की थी, एडिसन के बेटे। अगर कोई दूसरा होता तो वही खत्म, जीवन भर जितने पैसे कमाए एक धक से चले गए। सोचो जहां आप रहते हो उस घर को आग लग जाए, और अभी बस जल रहा है, बस थोड़ा सा बाकी है और तब आप वहां पहुंचो, क्या करोगे? रोना, दुखी होना, उदास होना, या फिर आहा। ये नहीं कि एडिसन ने चुपचाप नहीं बैठा हो, गया परंतु फिर से खड़ा कर दिया ना, संकल्प से, उससे भी बड़ा खड़ा कर दिया जो कुछ जल गया था। 1910 की बात है। तो अकेले जब हो जाते हो तो निर्बल बन जाते हो, अकेले जब हो जाते हो तो क्या होता है, कमजोरी के संकल्प आने लगते हैं। तीसरा, अकेले जब हो जाते हो तो दुख का अनुभव होता है। इस मुरली में बाबा ने कहा, जन्म जन्म तुमने आत्माओं के साथ में साथ निभाया, आत्माओं से दुख पाया, अब बाप का साथ मिला है, क्या अब भी उसी दुख में रहना है? जैसे ही अकेले होंगे अनुभव किसका होगा, दुख का। दुख बहुत खराब चीज है, दुख की अवस्था, व्यक्ति नंब हो जाता है, सुन, डेड साइलेंस, कुछ भी नहीं बोलता, ना हंसता है ना रोता है, बस नंब। आंसू भी सूख जाते हैं, खत्म, आंसू ही नहीं आते। जैसे हम मुंबई में हॉस्पिटल में काम करते थे, इसके पहले भी सुनाया था, वहां पे जो सर्जन थे उस समय, उनका एक ही बेटा था और उसने भी वो डेंटल किया था, वो भी लंदन में। उसकी एग्जाम पूरी हुई, डिग्री मिली उसे, BDS वो सब की। उसने फोन किया घर पे, बहुत खुश कि पिताजी मैं पास हो गया, ये हो गया, मुझे डिग्री मिल गई। फोन आया, फोन रखा, 5 मिनट के बाद दूसरा फोन आया, योर सन इज डेड। बस वो फोन कॉल के वहां बूथ से निकला, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ पर सीरियस नहीं है, ऑन द स्पॉट डेड, खत्म हो गया। वो सर्जन इतने फेमस सर्जन थे, वो जैसे फोन रखा वो चुप ही हो गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ना रोना ना कुछ, ना कुछ ना कुछ, टोटल डेड में चले गए। मतलब इतना बड़ा सदमा था वो कि वो निकल ही नहीं पाए फिर उससे कभी। तो ऐसी दुख की अनुभूति होती है, इसलिए वो अभ्यास निरंतर चाहिए, जाते उठते जागते सोते, मैं कंबाइंड हूं, बाबा मेरे साथ है, अलग अलग अभ्यास। यहां तो कहा शिव शक्ति कंबाइंड, वो छत्र छाया है, वो साथ है, वो मददगार है, हाथों में हाथ है, बहुत सारी चीजें, वो सारी नहीं तो ये दुख का अनुभव होता है। तीसरा, चौथा, अलमस्त हो खेल दिखाते हैं। बाबा ने इस मुरली में खेल को याद किया है, बंदर और बंदरिया, हमने तो कभी नहीं देखा ये खेल, पता नहीं गांव में होता होगा उस समय। तो बाबा ने कहा बंदरिया को पकड़ के लेके आए, उसकी शादी करवा दी बंदर से, अब बंदरिया की इच्छा नहीं है शादी करने की, पर जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं बंदर से, तो बंदरिया घूंघट के अंदर ही रहती है, वो घूंघट नहीं खोलती है, वो पीट कर देती है, वो दूल्हा मीन्स बंदर इधर से आता है वो इधर करती है। तो ये वो कठपुतलियों में दिखाते होंगे शायद, बंदर में। अच्छा, रियल में। अच्छा, हमने नहीं देखा, देखना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे बंदरिया, तो बाप भी तुम्हारे पास आते, तुम भी क्या करते हो, बाप को पीठ दिखा देते हो, बंदरिया बन जाते हो, नटखट हो जाते हो, बाप तुमको रिझाते हैं पर तुम नटखट करते हो, ऐसे लिखा है मुरली में। तो जब अकेले हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अलमस्त और खेल दिखाते हो ये सारे। लापरवाह, मदमस्त, पांचवा उदासी। क्या आ जाती है जीवन में, डिप्रेशन। डिप्रेस्ड व्यक्ति जो होता है इनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर एकदम अच्छा है, शरीर में कुछ भी नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, पर वो कहते हैं जीने की इच्छा ही नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये साइकेट्रिक इलनेस है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD। साइकेट्री दो भागों में विभाजित है, एक न्यूरोसिस एक साइकोसिस। न्यूरोसिस थोड़ा हल्का हल्का, जैसे इंटरव्यू देने गए फेल हो गए, थोड़ा उदास फील हुआ, नेचुरल है, या किसी की मृत्यु हो गई 6 मास तक, वो थोड़ा सा दुख जैसा है, ठीक है। पर ये जो होता है साइकोसिस, वो अलग ही है। साइकोसिस इंडोजेनस डिप्रेशन, कोई कारण नहीं है ऊपर से, सब अच्छे, सब प्यार करने वाले, फिर भी मन उदास है, और वो उदासी बहुत गहरी है, और उदासी के साथ सुसाइडल थॉट्स जुड़े हुए हैं। इसके क्राइटेरिया है अलग से, व्यक्ति कोशिश करते रहता है कैसे आत्महत्या करूं, और बोलते भी रहता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, पर वो एक दिन करके दिखा देता है। हर मास में एक पेशेंट तो आता ही है जरूर सुसाइडल अटेम्प्ट वाला, हर 2 या 3 मास में एक रहता है, पर लोग भी बड़े हिसाब से करते हैं, मतलब थोड़ा सा, और पॉइजन भी डुप्लीकेट, परंतु भीतर उदासी तो है ना, बहुत उदास है चेतना। कोई लोग डराने के लिए करते हैं, कोई लोग प्यार पाने के लिए करते हैं, इसलिए हिसाब से लेते हैं बिल्कुल कम डोज, ताकि सारे लोग आ जाए। ऐसा बहुत संसार में होते रहता है। एक बार हॉस्पिटल में एक भाई और बहन दोनों एडमिट हुए थे, आशिक और माशुक, तो माउंट में आए और यहाँ वो लोगों ने खा लिया। फिर वो दोनों के पेरेंट्स आए, वो उस कमरे में था P1 में, उधर ये P1 आगे वाले कमरे में, उधर उसके पेरेंट्स, इधर इसके पेरेंट्स, और दोनों दुश्मन पेरेंट्स। संसार में आशिक माशुक ये सब करते रहते। पिता ने अपनी किडनी दे दी बेटी को, क्योंकि उसको डायलिसिस चालू हो गया, और बेटी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जिससे उसका प्यार था उसने शादी करने से मना कर दिया। ये संसार की रियलिटी है। इधर पिता ने किडनी दे दी और बेटी ने आत्महत्या क्यों कर ली, क्योंकि जिससे प्यार करती थी उसने मना कर दिया। तो ये संसार में ये सारी बातें होती रहती है, ये सब वो अवस्थाएं हैं जहां भगवान नहीं है जीवन में, बहुत दूर है, परिचय ही नहीं है, या परिचय है भी तो भी भटक गए हैं। तो क्या आता है, उदासी, उदास अवस्था। उदासी है मतलब राजों को नहीं समझा है, उदासी है मतलब बाप दूर है, बस ये दो ही कारण है उदासी के। उदासी अर्थात ड्रामा के रास को नहीं जानना है, उदासी अर्थात भगवान नहीं है, दास हो चुके हैं माया के। अगला छठवा, भगवान ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है, अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन है, सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, उस समय क्या बन जाता है, नीरस और बिल्कुल असार अनुभव होता है जीवन। अगली पॉइंट, जीवन क्या अनुभव होता है, असार, कुछ फायदा कुछ नहीं करना है यहां, कुछ करने जैसा है ही नहीं, होपलेस, टोटल होपलेसनेस, बस मर जाऊं, ये एक ही बार बार विचार आने लगते हैं, मर जाने के मर जाने के मर जाने के। अटेम्प्ट करता है, कभी ऊपर से कूदता है, कभी यहां कुछ लगाते हैं, जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं है, विचार आते रहते हैं, मरना है मरना है मरना है, और व्यक्ति बोल के भी बताता है, और जब भी कोई ऐसा बोले ना, बिल्कुल उसको हंसी मजाक में मत लेना, चाहे वो ऐसे ही बोल रहा हो पर वो करके दिखाएगा, क्योंकि अंदर वही घूम रहा है उसका। तो जीवन निरस और असार अनुभव होता है, अगर ये अनुभव हो रहा है उसका दूसरा अर्थ क्या है, अकेले हो, उसका दूसरा अर्थ क्या है, बाबा से बहुत दूर चले गए हो, और बाबा से दूर नजदीक आने की एक विधि कौन सी है, मुरली, अध्ययन, पढ़ना। अगला बहुत अच्छे अच्छे चार पॉइंट्स है, ये त्रिनेत्री है पर राह नजर नहीं आती, कौन हो, त्रिनेत्री पर दिखता कुछ नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, टू बी और नॉट टू बी, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं क्या करूं, अनिर्णय की अवस्था, इन टू माइंड्स, इन डिसीजन। अगला त्रिकालदर्शी है पर वर्तमान भी नहीं समझ सकते। अगला खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को ठिकाना नजर नहीं आता, ये चारों पॉइंट्स है इसमें। चौथा सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को नहीं जान सकते, क्या करते उनको ही समझ नहीं आता है। तो ये चारों पॉइंट्स है यहाँ पर। पहली बताई कि त्रिनेत्री है पर दिखता नहीं है, त्रिकालदर्शी है पर वर्तमान को नहीं देख पाते, गेट खोलने वाले हैं जीवन मुक्ति के परंतु खुद को ठिकाना नहीं नजर आता, और सृष्टि की आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले हो। बाबा ने कहा है तुम भृगु ऋषि हो, भृगु ऋषि जो है ना वो ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख जिन्होंने चालू किया, तुम भृगु ऋषि हो इस सृष्टि के, तो तुम ही नहीं देख पाते, वर्तमान के कर्म के परिणाम को नहीं जान पाते, व्यक्ति जो कर रहा है क्यों कर रहा है कुछ समझ नहीं आता है उसे, कंफ्यूज स्टेट ऑफ द माइंड। तो ये 10 बातें होती है, कब होगी ये 10 बातें, जब अकेला होगे तब, इसलिए बाबा ने कहा कंबाइंड का अभ्यास करो, मैं शिव शक्ति हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, शिव मेरे साथ है, मुझ शक्ति में शिव समाया हुआ है, शिव मुझ में समाया है, मैं शिव में समाई हूं, शक्ति शिव में है, शक्ति में शिव है। तो ये अलग अलग समान निर्माण करने हैं, मैं शिव की शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं आदि शक्ति हूं, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, शिव की जो शिवा है वो मैं हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, अर्धनारेश्वर का गायन है, मैं और वो एक। तो यही अभ्यास करना, एक है कंबाइंड, एक है साथ, एक है छत्र छाया, अलग अलग अभ्यास, मैं कंबाइंड हूं वो साथ है, या वो मेरे ऊपर छत्र छाया, या फिर मैं अकेला कहीं पर भी नहीं हूं, जहां मैं जाता हूं वहां वो है, ये सारे अभ्यास है। तो ये तीन रूप, आत्मा शरीर, भविष्य विष्णु, और अभी का शिव शक्ति, बाबा ने कहा इसका अभ्यास करो। तो वो कौन सी 10 बातें जो हो जाएगी, पहला निर्बल बन जाओगे, यदि निर्बल हो तो क्या समझ लेना मैं भगवान से दूर हूं। तो आज का होमवर्क नंबर वन, निरंतर बाबा के साथ का अनुभव कैसे करें, उसकी 10 बातें लिखनी है। निरंतर बाबा के साथ का अनुभव कैसे करें, क्या करें। उदाहरण, बीच बीच में उसको शुक्रिया करना, ये एक मेथड है। दूसरा, उसको मैसेजेस करना। एक ग्रुप बनाओ, पहले भी बताया था, व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बनाओ जिसमें किसी और को ऐड करो और उसको हटा दो, ग्रुप बन गया। तो जिस ग्रुप में कौन है, केवल तुम, और दिन भर उसको मैसेज कर देने ना, अभी यहाँ हूँ, अभी वहाँ हूँ, हेलो, आप कहाँ हो, हाउ आर यू, रिसीव्ड, अभी यहाँ पहुँचा, अभी वहाँ पहुँचा, क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है। उसको इन्फॉर्म करते रहना, जैसे किसी दोस्त को बता रहे हो सब कुछ, वैसे उसको बताते रहना दिन भर, छोटे छोटे मैसेज, वो आपको जोड़ के रखेगा उससे। अच्छा, अकेले मैसेज करते तो ब्लूटूथ तुरंत आता है, टिक टिक टिक, रीड हो गया मतलब। तो कुछ ना कुछ मैसेजेस करते रहना उसको दिन भर, उसको फोन करते रहना, उससे बात करते रहना, उसको शुक्रिया करते रहना, या उसकी मुरली पढ़ते रहना, उसकी सेवा करते रहना, उसने सिखाया हुआ योग करते रहना, मधुबन की मन से यात्रा करते रहना, मधुबन में आ जाना, या उसने दिए जो काम है वो करते रहना। आज किया सबने अमृत वेला, वो चेकलिस्ट? अच्छा, अभी प्रैक्टिस करो, वैसे 12 से तो नहीं, रोज ही करना है। तो कौन सी बातें थी वो चेकलिस्ट की आशीष भाई? सबसे पहला 5 तत्व नहीं है, पहला 5 इंद्रिय, 11 पॉइंट्स है। सबके सब कौन बताएगा एक साथ? पुरुषोत्तम भाई, सबके सब 11 पॉइंट्स। पहला, अमृत वेला क्या क्या करना है। सबसे पहला तो अपनी मुझ आत्मा से मेरे पूरे मुरे पूरे शरीर को प्योरिटी की किरणें जा रही है, शक्ति आ जा रही है, एक 5 इंद्रिय। दूसरा, 5 तत्व, आकाश को पवित्र करो, हवाओं को पवित्र करो, धरती पर उतरो, धरती को पवित्र करो, जल को पवित्र करो और अग्नि को। दूसरा, तीसरा, 5 खंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग ऊपर ऊपर जाओ और अलग अलग किरणें दो, किसी को शांति दो, किसी को पवित्रता, किसी को जहां जिसकी जो आवश्यकता है। फिर 5 महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण आर्टिक, 5 महासागर, उसमें भी अलग अलग प्रयोग, जैसे मैं फरिश्ता उस पर चल रहा हूं, भारत से चलना चालू कि अफ्रीका और भारत के बीच में, 2-3 छलांग में अफ्रीका पहुंच जाओ, एक एक कदम में, एक कदम इधर, या तो 5 कदम में 5 महासागर। तीसरा, चौथा, 5 सत्ताओं को सकाश, धर्म सत्ता को इमर्ज करो, देखो गुरुओं को, गोसाइयों को, सब सब साधु संत योगी महात्मा, सारे मठ, सारे आश्रम, सारी आध्यात्मिक संस्थाएं, सबको देख लो और उनको एक साथ सकाश दे दो, और उनको आह्वान भी करो, हे आ जाओ, क्योंकि उसमें भी देवी देवता धर्म की आत्माएं छिपी हुई है, अब तक जो पहुंची नहीं है, हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ। ये कितना पावरफुल संकल्प है, हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ। भक्ति कर रहे हैं लोग, आरती कर रहे, पूजा कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, उन सबको आह्वान करो, आ जाओ। उसके बाद में कौन सी सत्ता, 5 सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये जो भी है साइंटिफिक माइंड वाले लोग, उनको भी आह्वान करो, उनका भी आह्वान। उसके बाद में कौन सी सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, सबको, सब एक ही है हमारे लिए, सब आ जाए, ठीक है। अगर उनमें परिवर्तन अगर आ गया तो समाज का कितना भला हो जाएगा, अगर उन एक के मन में निस्वार्थ भाव जागृत हो जाए तो कितना वो समाज को आगे बढ़ा देंगे वो लोग, स्वार्थ में डूबे हुए ना। उसके बाद में प्रकृति की सत्ता, भालू शेर हाथी घोड़ा सब, पेड़ पौधे सब कुछ, सबको एक साथ। उसके बाद में कर्म की नहीं है वो, तो लौकिक ज्ञान की सत्ता। ये लौकिक पढ़ाई, लौकिक ज्ञान क्या है, इसमें बहुत सारी बातें आएगी, इसका फिर भी चिंतन करते रहो, फिर चर्चा करेंगे इस पर। अगला, पांच प्रकार की, पहले संसार की आत्माएं ले लो, दुखी आत्माओं को सुख की किरणें दो, दुखी आत्माओं को इमर्ज करो। कितने हैं जो इस समय अभी सोच रहे मर जाऊं, रात भर नींद नहीं आई है, 5 बज गए 6 बज गए अभी तक नींद नहीं आई। रोज ऐसे एक दो पेशेंट तो रहते ही है जो कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, रोज 3-4 बजते और 4 बजे फिर नींद लगती है और फिर 5 बजे खुल जाती है, फिर दिन भर नहीं, नींद ही नहीं आती, क्या करे, बेचैनी बेचैनी रहती है, हमेशा बेचैनी रहती है, उदासी रहती है, नींद ही नहीं आती, क्या करे। अमेरिका में एवरी 3rd person मतलब रैंडम 3 लोग है उसमें से एक व्यक्ति नींद की गोली खा के सोता है। एवरी 3 रैंडम अगर चूज किया जाए पॉपुलेशन में से, उसमें से एक को नींद की गोली चालू है, तो ये 1 out of every 3। हाँ, जितनी ज्यादा समृद्धि जहां है उतना ज्यादा दुख भी उसके साथ है। तो दुखी आत्माओं को सुख, अशांत आत्माओं को शांति, अपवित्र आत्माओं को पवित्रता, उसमें सब आ जाएंगे, अपवित्र में फिर सारे विकारी वेश्या सब 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 संसार में जो भी है, इस तरह से। अगला, अतृप्त प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है। अगला, भटक रही है आत्माएं, शरीर छोड़ दिया है भटक रही है, वो भटकती आत्माओं को ठिकाना, या फिर शरीर में ही है पर ठिकाना नहीं मिल रहा है, कहाँ करूं क्या करूं किसके पास जाऊं किससे पूछूं, पूछ भटक रही है यहाँ। तो ये 5 प्रकार, फिर 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, सब टीचर्स को इमर्ज करो और उनमें अलौकिक शक्तियां भर दो, क्योंकि उनको बड़े बड़े काम करने हैं, अपनी शक्तियां उनसे जोड़ दो, उनको शुभ भावना शुभ कामना शक्तियां ज्ञान सब दे दो। कुमार, ब्रह्मचर्य की शक्ति दो, कुमारिया ब्रह्मचर्य की शक्ति दो, माताएं निश्चय की शक्ति दो, संपूर्ण निश्चय, भाई सब अलग अलग शक्तियां दो। ये 5 प्रकार के ब्राह्मण। उसके बाद में 5 मधुबन के स्थान, ऊपर के 5 नीचे के 5, फिर 5 प्रकार की विशेष आत्मा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आत्माओं से माफी मांगना, आत्माओं को माफ करना, आत्माओं को धन्यवाद देना, और कोई एक विशेष आत्मा है जिससे बहुत ही कड़ा बंधन है, हो सकता है तुम्हारा वो बॉस ही है, यूजुअली वही रहता है इंचार्ज, जिससे बहुत ही कड़ा बंधन है, मतलब सब कुछ कर लिया पर वो उलझते गया, रिश्ते उलझते गए, कभी भी कई बार रिश्ते जब उलझ जाते हैं ना, रिश्ते जब उलझ जाते हैं उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है, उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता होती है, रिश्तों में ठहराव आ जाता है, उस समय मौन हो जाओ, बार बार वार्तालाप नहीं करो, चुप हो जाओ, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता होती है, चुप दोनों पार्टी विद समझ एंड देन कम बैक। उसके बाद में जो आने वाली, आज दिन भर कोई नई आत्मा आएगी कुछ तो करेगी, उसको पहले से ही सकाज देके रखो, कहां से कौन आ जाए पता ही नहीं ना, हमने क्या कर रखा है इतने जन्मों में कुछ खबर नहीं, अचानक कोई भी कभी भी टपक पड़ेगा हिसाब किताब चुक तू करने। ट्रेन में बैठे आराम से एक व्यक्ति आता है और झगड़ाई करने लगता है, मेरी सीट है उठो उठो उठो, हम कहते मेरी सीट है, वो कहते मेरी सीट है, बहुत गालियां देता है, फिर वो कहते अरे मेरी टिकट तो कल की है ट्रेन वही सीट वही एक दिन पहले ही आ गया मतलब जो भी है, पर जो उसने दिया, पर गाली तो दी ना और चला गया, और उसने ये नहीं बताया कि सीट उसकी अगले दिन की ट्रेन है। वो झगड़ा करते गया, झगड़ा करते गया, फिर बाहर गया थोड़ा, वहां उसने देखा रे, और उधर से चुपचाप निकल गया। हमको बताने थोड़ी ना आया कि भाई साहब सब माफ कर देना, ऐसा कुछ नहीं। तो वो क्या था, वो कुछ तो था, बच्चा ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है। बच्चा हुआ घर में, बच्चा होते ही पता चला दिल में छेद है। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन 5 लाख, बच्चे का तुरंत ऑपरेशन, 5 दिन का बच्चा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा नहीं बच्चा। बहुत बड़ा छेद है, हार्ट में होल है, वैल्व लीक हो रहा है। तो माँ बाप तो गरीब है, इधर से कर्जा उधर से कर्जा, ये लिया वो किया, दिन में काम किया, रात में काम किया, मजदूरी की, सब कुछ किया, 5 लाख रुपए जमा किए, 5 लाख रुपए जमा किए, डॉक्टर को दिए, ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। 5 ऑपरेशन के 5 दिन के बाद बच्चा मर गया। किस लिए आया था? लेने आया था ना वो, 5 5 हजार लाख रुपए लेने आया था। इसलिए जब बच्चा घर में जन्म होता है ना, पालने में दिखता है कितना मीठा लगता है, पर वो उसके हाथ में तलवार भी है एक, उसको मत भूलना, वो हिसाब चुक तू करने आया है। दिखता तो बहुत अच्छा है, पर हिसाब चुक तू करने आया है। इसलिए हाँ, कितना उसको गले में ये करते हैं, मेरे बेटा बेटा, ऐसे ऐसे क्या क्या करते हैं, उसको इतनी खुशियां मनाते हैं, पर भूलना मत उसके हाथ में तलवार है हिसाब किताब की। उसके साथ फोटो, वो जब बोलता है ऐसे लंगड़ता, वो चलता है तो कितना प्यार आता है माताओं को, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, पर भूलना मत वो बड़ा होने के बाद क्या करने वाला है। तलवार लेकर आया है वो, तलवार, वो पालने में उसके बाजू में तलवार रखी रहती है, उसको मत भूलना। तो ऐसी आत्माएं जो आने वाली है, 5 प्रकार की आत्माएं, फिर 5 प्रकार के विकार, ये बहुत अच्छा योग है। 5 प्रकार के विकारों को देखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और यहां से अग्नि धारा, अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है और एक एक को भस्म कर रही है। मम हृदय कंज निवास कर कामा दिखल दल भंजनम। अगला 5, मधुबन के 5 स्थान, फिर बाहर के 5 स्थान, बाहर में सारे सेंटर्स के ऊपर जाओ, फरिश्ता रूप में सकाश दो, जितने सेंटर्स है पूरे शहर में या पूरे भारत में या पूरे विश्व में, फिर जितने गीता पाठशाला है, फिर जितने रिट्रीट सेंटर है, फिर जितने जगह है बाबा की वो सारी, और जितनी वो जगह जहां पर बहने जाती है जो बाबा के स्थान नहीं है, मुरली सुनाने जाके वापस आ जाती है, वो सारे स्थान, तो वो, और हो गया। तो ये काम करना है, ये चेकलिस्ट है अमृत वेले की, इसलिए आज रिपीट किया, नहीं तो आज रिपीट करने का कोई उसका कारण नहीं था, कल हो चुका था ये, फिर भी आज, तो ये पक्का होना चाहिए। अमृत वेला इन 5 इन 11 चीजों के बगैर, 11 × 5 कितने हो गए, 55। अमृत वेला, अगर अमृत वेला ही काम नहीं हुआ तो फिर दोपहर में करो जो बचा था, या शाम के योग के समय करो, पर करना जरूर है। ठीक है, ये सकाश की सारी बात है। हाँ, दो 10 बातें। पहली बात, जब बाबा से दूर हो जाते तो क्या होता है, भय निर्बल बन जाते हैं। दूसरा, कमजोरी के संकल्प आते हैं। तीसरा, दुखी हो जाते हैं। चौथा, अलमस्त क्या होकर खेल करते, बाबा तुमको मनाते, फिर तुम बाबा को जाके रिझाते हो, बाबा तुम कृपालु हो, रहमदिल हो, ये सब आप ही तो सब कुछ हो, बाप को याद दिलाते, और फिर बाप क्या करते उस समय, लॉ एंड ऑर्डर का बैलेंस ऐसा बताया उसमें, लॉ और लव का, तो वो सारी बातें। उसके बाद उदासी आ जाती है, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड माइंड, यदि डिप्रेस्ड है तो समझ लेना हम बाबा से दूर है, रास को नहीं जानते। तो यात्रा कहां से चालू करनी है, तो आज का होमवर्क क्या बताया, 10 पॉइंट्स लिखने हैं जिससे बाबा के लिए प्यार अभी जितना है वो डबल हो जाए। अभी जितना प्यार है वो कितना हो जाए, डबल। डबल समझते हैं ना, डबल मतलब डबल। अभी 10 है तो 20, दैट वन। अगला, अतीन्द्रिय सुख वाला जीवन है वो नीरस अनुभव होता है, बिल्कुल असार अनुभव होता है, जो सर्व प्राप्तियों वाला जीवन है, सर्व संबंधों वाला जीवन है बाप से। अतीन्द्रिय सुख का जीवन है वो एकदम ऐसे लगता है कुछ जीवन का लक्ष्य ही नहीं, नीरस हो गया, एकदम असार लग रहा है, बस कुछ नहीं, अभी एक ही मार्ग दिख रहा है, बस मर जाओ मर जाओ मर जाओ। और दूसरी बात, अगर कोई दुख में शरीर भी छोड़ता है ये समझने के लिए जीवन के दुखों का अंत कर दूं, तो अगला जन्म जो होगा, जहां वो जन्म लेगा, जन्म से ही दुख की स्मृति के साथ जन्म लेगा। ये मत समझना कि अगला जन्म बहुत सुखी और संपन्न होगा, क्योंकि जो अंतिम संकल्प है मृत्यु के समय, वहीं से अगले जीवन की शुरुआत होती है। तो वो ऐसे ही बचपन से ही उदासी, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो डिप्रेशन में है, उनको इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, खेलने की इच्छा नहीं होती, कूदने की, कुछ नहीं। माँ बाप कहते हैं बस ये रोता रहता है, क्यों रोता है पता नहीं समझता, उसको पूछो तो वो बोलता नहीं कुछ। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे हमारे अभी भी एक पेशेंट की, एक दूर गांव के है देहात, उसकी माताजी एडमिट है, तो वो बचपन से ही मंद है, इतना उसको समझ नहीं आता है, तो उसको कुछ नहीं समझता, 5 रुपये क्या, 100 रुपये क्या, एक ही है उसके लिए सारा। वो माताजी अच्छी है बट उसको कुछ समझता नहीं है, एकदम मंद है, बीच बीच में रोती है फिर हंसती है, काम सब करती है घर का, पर वो बेटा कहता है वो कनेक्ट नहीं हो पाते उससे कोई भी, उसको एडमिट किया है 2 दिन से, और रिपोर्ट सब ठीक है, रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं, पर क्या करे। तो ये ऐसा सब पूर्व जन्म का है हिसाब। अगला, त्रिनेत्री है परंतु दिखता नहीं, त्रिकालदर्शी है परंतु ठिकाना ही पता नहीं। अगला, सबको मुक्त करने वाले, जीवन मुक्ति का गेट खोलने वाले हैं परंतु अपना ठिकाना नहीं है। अगला, सृष्टि के परिणाम को जानते हो, भृगु ऋषि हो, भविष्य, परंतु खुद के कर्मों के परिणाम क्या है ये पता नहीं। तो ये अवस्था आ जाती है। तो इस ज्ञान में दादी जानकी के पास क्या था, बहुत ज्यादा स्किल्स थी क्या? उसको तो थर्ड तीसरी तक पढ़ी थी बस। दादी कहती थी मुझे तो सिंधी भी नहीं आती ठीक से, हिंदी तो आती ही नहीं है, वो बाद में सीखा धीरे धीरे, न सिंधी न हिंदी, केवल बिंदी। दादी जानकी पर किताब लिखी है विदेश की एक महिला ने, देखिए वो हमारे पास है, इंग्लिश की बुक है, 100 ईयर्स ऑफ सर्विस, विदेश की एक बहन ने जो सहयोगी है, पूरा ज्ञान में नहीं है, इंग्लिश में बुक लिखी है, उस बुक की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, उसमें प्रेफेस में लिखा है कि यदि भारत की एक महिला जो अनपढ़ है, उसका जो प्रस्तावना है, कल हम लेके आएंगे वो बुक, जो कि अनपढ़ है, अगर ऐसी लेडी भारत की लंदन में अपना परमानेंट घर बना सकती है तो इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। उसको कुछ भी नहीं पता, वो तीसरी तक पढ़ी है बस, न हिंदी न सिंधी और इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे देश में प्रवेश कर रही है जहां इंग्लिश स्पीकिंग लोग है, उसके पास कोई खास स्किल्स नहीं है। अगर वो लंदन जैसे जगह पर अपना परमानेंट घर बना सकती है तो इस संसार में असंभव क्या है? तो क्या है इसके पास? प्रेम, वो प्रभु प्रेम है बस, वो निश्चय था और कुछ नहीं था। कंबाइंड जैसे बाबा और मैं एक हूं, निरंतर ये अनुभूति में वो आत्मा रही। वही दादी नहीं, सभी दादियां ले लो, एक एक दादी का अगर देखो हम तो कैसा ये है। ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस चालू थी, प्रकाश मणि दादी और वो सारे लोग बैठे हुए थे, तो दादी ने कहा कि मैंने आप आज तक अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, दादी ने कहा। ठीक है, उस सभा में एक लॉयर बैठा था और बाजू में एक बड़ी बहन थी, वो लॉयर उस बहन को कहता है कि हम जो कोर्ट में देखते हैं ना, ये ऐसा हम रोज ही देखते हैं कि लोग जो भी झूठ बोलते हैं ना, कहते क्या है, मैंने कभी भी झूठ नहीं, मैं गीता पर कसम खा के कहता हूं, कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हमने सच को झूठ और झूठ इतना देखा है जीवन भर। वो लॉयर कहने लगा, शायद बाजू में जयंती बहन बैठे थे, उनको कहा कि मैंने ये बहुत देखा है, और जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है मैं समझ जाता हूं, पकड़ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, भले वो कह कुछ रहा है कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसा कहने वाले तो बहुत है, यही तो होता है कोर्ट में। पर उस लॉयर ने कहा, पर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो दादी बोल रही है ना ये सही है कि ये आत्मा ऐसी है कि इसके बोल से ही पता चलता है कि ये झूठ बोल ही नहीं सकती, इसको झूठ क्या है वो पता ही नहीं है। और ये मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि रोज मैं यही तो देखता हूं, और जो झूठ बोलता है तुरंत मैं पकड़ सकता हूं उसको तो ये हमारी एक एक दादी ऐसी है। इसलिए ब्रह्मा का जीवन, मम्मा का जीवन, दादियों का जीवन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ये तो है ही निखिलेश भाई, वो भी करते रहना। तो ये 10 बातें थी यही करते रहना, इसमें ही डूबो के रहना। तो पहला प्रश्न आज का होमवर्क बताया, पहला 10 बातें लिखनी है जिससे बाबा के लिए प्यार बढ़ जाए। दूसरा होमवर्क जो दूसरी मुरली है ये वाली 9-9, तो इसमें तो बहुत सारी बातें आई है, और वो सारी बातें स्थित प्रज्ञ योगी की बातें है। जो कोई निंदा करे तो क्या करो, ग्लानी कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसका सत्कार करो। ये बहुत ऊंची ऊंची बात है, ये संतों के जीवन में सब दिखाई दी गई है, बाबा के जीवन में देखी गई है ये सारी बातें। ये जो दूसरी मुरली में है ना कि ग्लानी को गायन में परिवर्तन करो, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तन करो, अपमान को स्व अभिमान में परिवर्तन कर दो, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन कर दो। पूरी मुरली उसी के ऊपर है, बहुत स्ट्रांग मुरली है ये दूसरी भी। तो इस मुरली से आपको क्या करना है, 10 महावाक्य लिखने हैं। उसकी शुरुआत कैसी होगी, मीठे बच्चे, जैसे साकार मुरली में आता है ना मीठे बच्चे, और एक वाक्य होता है। तो आपको इस तरह से ऐसे 10 महावाक्य तैयार करने हैं, मीठे बच्चे, वो प्रॉपर तैयार करने पड़ेंगे, जैसे रोज की साकार मुरली में वाक्य आता है ना उस टाइप से। इसमें ऐसा डायरेक्ट लिखे नहीं है कहीं पर, क्योंकि अव्यक्त वाणी है। तो आपको अव्यक्त वाणी से क्या बनाने हैं, 10 पावरफुल महावाक्य बनाने हैं। हाँ, वो 2 लाइन हो सकती है, 3 लाइन पे नहीं जाओ, ओनली 1 या 2 लाइन वाले। मीठे बच्चे तुम ये हो, फुल स्टॉप। हाँ, अव्यक्त को साकार में कन्वर्ट करना। कल जो एक वरदान का दिया था, कई लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया उसमें। वो वरदान मतलब पूरा मीनिंगफुल वरदान होना चाहिए, ये करने वाले, ऐसे ऐसे करने वाले, ये भव। लोगों ने कोई भी एक वाक्य उठा दिया और किसी ने तो सोमान ही लिख दिया, सब उल्टा पुल्टा। एक बार शिव बाबा की महिमा लिखने को कहा था, वो शिव बाबा के पॉइंट्स, तो बाप की 10 नाम लिखो या महिमा लिखो, किसी ने लिखा वर्षे का अधिकारी बाप मतलब ठीक है, सारे उत्तर वैसे ज्ञान योग में सही है, पर बता रहे थोड़ा सोचना है, चिंतन करना है, एकांत में जाके तो ही लिखना है। तो बस ये 2 ही काम है आज, इसमें से 10 महावाक्य तैयार करने हैं। और बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए, उसकी नई नई युक्तियां, डिजिटल मेथड्स, स्पिरिचुअल मेथड्स, रिलीजियस मेथड्स, टेक्निकल मेथड्स, प्रैक्टिकल मेथड्स लिखनी है। अच्छा, ओम शांति।
मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा छू जाए, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, खोजूं जहां में मैं तुम सा कहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर, क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में